विषय सूची। पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा होरेस, चौथा लोंगिनुस, पांचवा विलियम वर्ड्सवर्थ, छठा सैमुअल टेलर कॉलरिज, सातवां मैथ्यू अर्नाल्ड, आठवां बेनोदेत्तो क्रोचे, नौवां टॉमस स्टर्न्स इलियट, दसवां ईवर आर्म स्ट्रोंग रिचर्ड्स। अध्याय ए प्लेटो। समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान आदि के मूल स्रोतों का संधान करने वाले को अनिवार्यतः उस भूखंड में पहुंचना पड़ता है जिसे ग्रीस या यूनान कहते हैं। यूनान यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर अवस्थित एक प्रायद्वीप और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। स्वभावतः यूनान को बंदरगाहों की बेहद सुविधा है और यह सुविधा पूरे देश को उपलब्ध है, क्योंकि यूनान का कोई भी स्थान समुद्र से 80 मील अर्थात 120 किमी से अधिक दूर नहीं है। फलतः वहां के निवासी बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी हुए हैं। यूनान पर एक प्रकार से यूरोप और एशिया के संधि स्थल पर पड़ता है, इसलिए दोनों महादेशों में उसे व्यापारिक प्रसार का भी अवकाश रहा है। पैराग्राफ चेंज। यूनान को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। ये तीनों भाग पहाड़ियों से भरे हैं, अतः यातायात की दृष्टि से दुर्गम रही है। यही कारण है कि पूरे यूनान में कोई एक शासन कायम नहीं हो सका और छोटे छोटे नगर राज्यों सिटी स्टेट्स का विकास हुआ। ये नगर राज्य परस्पर स्वतंत्र तो थे ही, शत्रु भाव से भी ग्रस्त थे, इसलिए लड़ते भिड़ते रहते थे। भारत के इतिहास को ध्यान में रखें तो बात साफ हो जाएगी। जैसे प्राचीन या मध्य युग में यहाँ के राज्यों में आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वैसे ही यूनान में भी। इससे भारत के समान यूनान में भी राष्ट्रीयता का विकास बाधित रहा। यूनानी प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 राज्य थे, जिनमें तीन प्रमुख थे। इन्हीं तीनों का इतिहास एक तरह से यूनान का इतिहास है। उत्तरी भाग में मकदूनिया, मध्यवर्ती भाग में आत्तिका और दक्षिणी भाग में लाकोनिया। मकदूनिया को प्रसिद्धि मिली सिकंदर की जन्मभूमि होने से, जिसने विश्व विजेता होने का सपना देखा था। आत्तिका की राजधानी एथेंस यूनान की समस्त बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक उपलब्धियों और चमत्कारों का उद्गम स्थल है, जिनके कारण विश्व के इतिहास में यूनान का नाम अमर है। लाकोनिया की राजधानी स्पार्टा का महत्व उसके शौर्यवीर एवं सैन्य शक्ति के कारण था। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः एथेंस और स्पार्टा दो विरोधी आदर्शों, विचारधाराओं, जीवन मार्गों के प्रतिनिधि थे। एथेंस ने बौद्धिक पक्ष को प्रश्रय दिया, स्पार्टा ने शारीरिक पक्ष को। एथेंस में लोकतंत्र का विकास हुआ, स्पार्टा में अधिनायक तंत्र का। एथेंस ने स्वतंत्रता को काम्य माना, स्पार्टा ने नियंत्रण को। इसलिए जहां एथेंस में विचारक, साहित्यकार और कलाकार उत्पन्न हुए, वहां स्पार्टा में परिश्रमी, पराक्रमी और योद्धा। पैराग्राफ चेंज। 20वीं शताब्दी के प्रख्यात दार्शनिक बर्ट्रेंड रसल ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास में कुछ भी इतना आश्चर्यकर तथा अव्याख्याय नहीं है जितना यूनान में सभ्यता का आकस्मिक उदय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अकस्मात एक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके अलौकिक आलोक से एथेंस में ज्ञान विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र उद्भासित हो उठता है, और 200 वर्षों के बाद न जाने वह ज्योति कहाँ तिरोहित हो जाती है कि फिर कभी उसकी कोई झलक भी नहीं दिखाई देती। यूनान के सुदीर्घ इतिहास में ऐसी चतुर्मुख ज्योति न तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहले कभी दिखी और न 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। इसलिए रसल की टिप्पणी बिल्कुल सही है। पैराग्राफ चेंज। एथेंस की महत्ता तथा गरिमा का आरंभ तो 6वीं शताब्दी में ही हो जाता है, किंतु उसका विस्मयकारी रूप 5वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। जो एथेंस 5वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण विघ्न बाधाहीन नहीं था, ईरान ने 10 वर्षों के भीतर यूनान पर दो बार 490 ईसा पूर्व और 480 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, पर दोनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 480 ईसा पूर्व के युद्ध में माराथन के मैदान में ईरान की ऐसी करारी हार हुई कि यूनान पर फिर आक्रमण करने का उसे साहस नहीं हुआ। और 4वीं शताब्दी में तो पासा ही पलट गया जब सिकंदर ने ईरान को ही पराजित कर यूनानी साम्राज्य में मिला लिया। माराथन के युद्ध में यूनान की विजय हुई जरूर, किंतु जन धन की इतनी क्षति हुई कि बौद्धिक कार्यकलाप अवरुद्ध सा हो गया। पैराग्राफ चेंज। पेरिक्लेस 500 से 429 ईसा पूर्व का 30 वर्षों 460 से 430 ईसा पूर्व का शासनकाल एथेंस के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके जैसे सुसंस्कृत, सुशिक्षित, दूरदर्शी, कल्पनाशील, राजनीति कुशल, कला प्रवीण, वाग्मी और लोकप्रिय शासक एथेंस में दूसरा नहीं हुआ। अपने इन दुर्लभ गुणों के कारण वह लगातार 15 बार एथेंस का शासक निर्वाचित हुआ और उसके शासन में एथेंस की आशातीत प्रगति हुई। सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में उसकी देन अभूतपूर्व रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी ईस्वी के पहले कभी भी इतनी रचनात्मक स्फूर्ति, सक्रियता और समृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती जैसी पेरिक्लेस के शासन में काल में सोफोक्लेस 495 से 405 ईसा पूर्व, एवरीपिडेस 480 से 460 ईसा पूर्व, एस्केलुस 525 से 456 ईसा पूर्व जैसे विख्यात दुखांतक, ट्रेजेडी नाट्यकार, अरिस्तोफानेस 445 से 385 ईसा पूर्व जैसा अद्भुत प्रहसनकार, सोकातेस 470 से 399 ईसा पूर्व जैसा महान विचारक, पिंदार 522 से 443 ईसा पूर्व जैसा यशस्वी प्रगतिकार, हेरोदोटस 480 से 425 ईसा पूर्व, थुकीदिदेस 464 से 404 ईसा पूर्व जैसा प्रसिद्ध इतिहासकार, हिप्पोक्रेटस 460 से 377 ईसा पूर्व जैसा लब्ध कीर्ति चिकित्सक, एम्पेडोक्लेस और देमोकितुस 460 से 375 ईसा पूर्व जैसे गंभीर वैज्ञानिक पेरिक्लेस युग की ही देन है। बर्ट्रेड रसल का कहना है कि संभवतः संपूर्ण इतिहास में पेरिक्लेस युगीन एथेंस की उपलब्धियां विलक्षणतम हैं। पेरिक्लेस के पहले एथेंस यूनान के ही कई राज्यों से पीछे था। वहां किसी क्षेत्र में कोई उल्लेख व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु विजय, वैभव और निर्माण की प्रेरणा के फलस्वरूप एक से एक नाटककार, मूर्तिकार, वास्तुकार उत्पन्न हुए जिनके कृतियां 2500 वर्षों के बाद भी आज अपनी रमणीयता एवं कलात्मकता से लोगों को मोह लेती है। वस्तुतः उसने उत्कृष्ट कृतियां यूरोप में आज तक निर्मित नहीं हो पाई। यदि 430 ईसा पूर्व के लगभग हम एथेंस की जनसंख्या 23000 पर ध्यान दे तो उसकी उपलब्धियां और भी आश्चर्यकर प्रतीत होती हैं। 230,000 से भी कोई जनसंख्या हुई, यह तो पटना या लखनऊ की एक तिहाई आबादी से भी कम है। इतनी कम आबादी के किसी नगर में कहीं भी और कभी भी बौद्धिक ऊर्जा तथा कलात्मक प्रकर्ष के ऐसे भव्य कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं। पेरिक्लेस का शासन उस कीर्तिमान का चरम बिंदु है। उसके शासन का अंत होते न होते यूनान का ह्रास आरंभ हो गया। पेरिक्लेस के शासन के अवगान के एक वर्ष पहले अर्थात 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। हम देख चुके हैं कि स्पार्टा ने बुद्धि पक्ष की कभी चिंता नहीं की। उसने केवल शारीरिक बल पर ध्यान दिया और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। अतः इस युद्ध में बौद्धिकता के उपासक एथेंस का पलड़ा हल्का होना ही था। आश्चर्य इसका नहीं था कि एथेंस पराजित हुआ, आश्चर्य इसका है कि यह युद्ध, जिसे पेलोपोन्नेसिया का युद्ध कहते हैं, 27 वर्ष तक चलता रहा और इतने दिनों तक एथेंस स्पार्टा का मुकाबला करता रहा, किंतु असमानों का युद्ध आखिर कब तक चलता? 404 ईसा पूर्व में एथेंस की हार हुई और एथेंस हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। फिर वह कभी खड़ा नहीं हो सका, किंतु राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाने पर भी उसकी बौद्धिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रकाश ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि काल की गति के साथ क्रमशः बढ़ता गया और अंततः वह संसार की कालजयी सांस्कृतिक का अंग बन गया। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो को समझने के लिए यह संक्षिप्त इतिहास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। इससे अवगत होने नहीं होने के कारण अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं और वे असमाहित रह जाते हैं। कहना अनपेक्षित है कि किसी देश के साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कला आदि को ठीक से समझने के लिए वहाँ के इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान अपरिहार्य है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो उच्चारण अंग्रेजी के अनुसार है। इस शब्द का यूनानी उच्चारण प्लाटोन है, जो अरबी में अफलातून के रूप में प्रचलित है। इस पुस्तक में अंग्रेजी का ही उच्चारण रखा गया है, क्योंकि यूनानी उच्चारण रखने से पाठकों को अनावश्यक भ्रम होता है। प्लेटो मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों से एथेंस के समृद्ध अभिजात कुलों से संबंध थे, जिनका एथेंस पर व्यापक राजनीतिक प्रभाव था। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म के 4 वर्ष पहले हुआ था। जैसा हम देख आए हैं, यह युद्ध 27 वर्षों तक चला है और 404 ईसा पूर्व में एथेंस के पराजय के साथ समाप्त हुआ। तात्पर्य कि प्लेटो का शैशव, किशोर एवं यौवन का भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब वे रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। स्पार्टा के बाहुबल के सामने जब एथेंस ने बुद्धि बल ने घुटने टेके होंगे, तो भावुक चिंतनशील प्लेटो पर इसका क्या प्रभाव होगा? यह सहज ही अनुमेय है। निसर्गतः कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात अटपटी सी लगती है। आलोचकों ने प्लेटो के कवि विरोधी दृष्टिकोण का केवल उल्लेख कर दिया, किंतु किसी ने इस विरोधाभास का समाधान प्रस्तुत नहीं किया। हमें इसका समाधान एथेंस की उपर्युक्त पराजय में मिला। काव्य और कला को शौर्य वीर्य के विकास में बाधक मानकर ही प्लेटो ने कवियों के बहिष्कार की बात कही। उन्हें काव्य मात्र से परहेज नहीं था, देव स्त्रोतों तथा महापुरुषों के आख्यानों का तो उन्होंने स्वागत ही किया है। उनके आक्रोश का के विषय में दुखांतक जो रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाते हैं, चूंकि कमजोर समाज अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वैसे साहित्य का लेखक राज्य में रहने का अधिकारी नहीं जो बल और पौरुष को जगाने के बदले स्त्रैण बनता है। पैराग्राफ चेंज। 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय हुई और उसके 5 वर्षों के बाद 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्यु दंड मिला। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, रूढ़ अर्थ से में भी अध्यापन भी नहीं किया। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका था संवाद अर्थात प्रश्नोत्तर, जिसमें अध्यापक और अध्येता दोनों सहभागी हों। एथेंस की सड़कों पर चलते हुए सुकरात कहीं भी नवयुवकों को बटोर लेते या उन्हें देख नवयुवकों का झुंड ही खुद इकट्ठा हो जाता और वे प्रश्नोत्तर में जुट जाते। सुकरात के आचार विचार रहन सहन और तौर तरीके इतने रूढ़ि विरोधी थे कि रूढ़िवादी उनसे खार खाए रहते थे। सुकरात बुद्धि तथा तर्क के अतिरिक्त किसी भी बाह्य सत्ता का आदेश मानने को तैयार न थे। उनकी विचार सारणी में भावना का स्थान नहीं था। वे आत्मदीपोभव के प्रचारक थे, इसलिए हर तरह के अधिकार के प्रति वह राजनीतिक भी क्यों न हो, उनका विद्रोह स्वाभाविक था। उम्र में कोई बड़ा है, इसलिए उसका कहना मानना जरूरी नहीं है। माता पिता होने मात्र से संतान के लिए उनका आदेश पालन कर्तव्य की कोटि में नहीं आता। सुकरात का आदर्श था परिणाम की चिंता छोड़कर, परिवार और परिवेश की चिंता छोड़कर, एक निष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य का अनुसंधान। इसमें कभी स्खलन नहीं, कोई समझौता नहीं। आचार शास्त्र में सुकरात उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिव गुड वही है जो उपयोगी यूजफुल है। सुकरात की सत्ता विषयक अवज्ञा की सीमा में मनुष्य ही नहीं देवता भी थे। प्रचलित लोकप्रिय धर्म तर्क की कसौटी पर जल्दी खरा नहीं उतरता था, और जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वह सुकरात को मान्य नहीं था। ईश्वर में उनकी आस्था थी, किंतु ईश्वरीय विधि विधान के संबंध में उनका दृष्टिकोण अज्ञेयवादी था। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लोकतांत्रिक स्वाधीनता का उपभोग करने पर भी, लोकतंत्र के दोषों की आलोचना करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। उदाहरणार्थ लाट के द्वारा दंडाधिकारियों का चयन उन्हें बिल्कुल अभिमत नहीं था। अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास आदि की आलोचना के कारण न तो वे जनसाधारण में लोकप्रिय थे और न अहमन्य बुजुर्गों के बीच, जिनकी बददिमागी का वे हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। प्लेटो जैसे अनेक प्रतिभाशाली युवकों के समय में सुकरात न संदेहवाद और प्रश्नवाद की, बौद्धिक साहस और बौद्धिक स्वातंत्र की भावना भर दी थी, और जो यथा स्थिति का समर्थन करने वाले रूढ़िवादी विचारणा को ग्राह्य नहीं थी। सुकरात के संवादों से यूनान में एक प्रकार का व्यक्तिवाद उभरा, जिससे रूढ़िवादियों को आशंका हुई कि यह सामाजिक संगठन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने सुकरात पर ईश्वर को नहीं मानने का, ईश्वर के स्थान पर विचित्र अतिलौकिक सुपर नेचुरल जीवों को प्रतिष्ठित करने का और युवकों को दूषित करने का आरोप लगाया। इस आरोप पर विचार करने के लिए 501 निर्णायकों की अदालत बैठी। अदालत ने 60 के बहुमत से सुकरात को अपराधी ठहराया और गणतंत्र के कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड के निर्णय में से सुकरात के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जेल में भी उनके संवाद का क्रम यथावत चलता रहा। मृत्यु के क्षण तक युवकों की मंडली उनकी विचारोत्तेजक बातें सुनती रही। सुकरात अपने हाथों में जहर पीते रहे हुए प्रश्न वदन बातें करते हुए धीरे धीरे चीर निद्रा में डूब गए। मृत्यु के समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। जैसा होता है, मृत्यु के बाद सुकरात सर्वत्र आदर, श्रद्धा, गर्व और शोक के पात्र बन गए। मृत्यु की दारुणता ने उनके प्रभाव को कोई कई गुना बढ़ा दिया। सुकरात के साथियों तथा अंतेवासियों ने उनकी मृत्यु के लिए निरंकुश विवेकहीन लोकतंत्र को भी कभी माफ नहीं किया। पैराग्राफ 6। एथेंस की पराजय और सुकरात के मृत्युदंड ने लोकतंत्र में प्लेटो की आस्था डिगा दी। वह लोकतंत्र किस काम का जो वैयक्तिक और वैचारिक स्वतंत्रता का इस तरह दम तो भरता है, किंतु शारीरिक बल की उपेक्षा कर युद्ध में पराजित होता है और परतंत्र बन जाता है। इससे भी भयंकर बात यह है कि एक ओर तो लोकतंत्र वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है, दूसरी ओर एक बुद्धिवादी को तर्क का प्रचार करने के लिए मौत के घाट उतार देता है, और 501 में 280 निर्णायक इस जघन्य निर्णय के पक्ष में अपना मत देते हैं। इससे तो स्पार्टा की कठोर अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कहीं अच्छी, जो न तो पराजय की ग्लानि का अनुभव करती है और न बुद्धिवादी होने के लिए किसी को मृत्यु दंड देती है। पैराग्राफ चेंज। जैसा कहा जा चुका है, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। शिष्य भी साधारण नहीं, अपूर्व मेधावी, पूर्णता अनुगत तथा सर्वात्मना समर्पित। उन्होंने सुकरात के विचारों को ही नहीं, उनकी पद्धति और शैली को भी ग्रहण किया। अंतर केवल इतना है कि जो काम सुकरात प्रवचन के द्वारा करते थे, उसे प्लेटो ने लेखन के द्वारा किया। इसका एक लाभ यह हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा वह लिखित होने से स्थायी बन गया। प्लेटो का लेखन अपने गुरु की ही शैली पर संवाद के रूप में है। दो या दो से अधिक पात्र एकत्र बैठते हैं, उनमें कोई प्रश्न करता है और सुकरात उत्तर देते हैं। स्मरणीय है कि प्लेटो ने सभी संवादों के प्रश्नकर्ता चाहे जो भी हो, उत्तरदाता या प्रवक्ता केवल सुकरात है। इन संवादों में प्लेटो कहीं नहीं है। लगता है कि उन्होंने अपनी गुरुवाणी को केवल लिपिबद्ध कर दिया है, विचार के सारे जैसे सुकरात के हों। यह निश्चय ही प्लेटो की गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है कि वे सब कुछ गुरु का ही कहकर प्रस्तुत करते हैं, अपने को भूलकर भी आगे नहीं लाते। गुरु से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, किंतु उनके जैसे चिंतनशील, कल्पनाशील और तार्किक के अपने विचार भी कम नहीं होंगे, पर अपने को उन्होंने कभी सामने नहीं आने दिया। इसलिए उनके संवादों में ऐतिहासिक सुकरात तथा सांवादिक सुकरात के बीच भेद करना असंभव है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव निस्संदेह अत्यंत गंभीर पड़ा। प्लेटो की काव्यात्मक भव्य उदात्त शैली बताती है कि वे मूलतः कवि थे। उनके लेखकीय जीवन का आरंभ हुआ भी नाटकों और कविताओं की रचना से, किंतु सुकरात के प्रभाव में आने पर उन्होंने उन ललित रचनाओं को नष्ट कर दिया और गुरु का अनुसरण करते हुए भगवान को छोड़ तर्क का मार्ग अपना लिया। गुरु के अधूरे कार्य को पूरा करना और आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य बना। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के साहित्यालोचक रूप पर विचार करते हुए इस समय स्मरण रखना चाहिए। पहला, वे आलोचक नहीं दार्शनिक हैं, अतः उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं, बल्कि अपने गुरु की तथा अपनी दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थान है। दूसरा, उन्होंने आलोचना पर स्वतंत्र या व्यवस्थित रूप में कुछ नहीं लिखा है, बल्कि अन्य प्रसंगों में काव्य या नाटक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस तरह से विचार अनेक संवादों में बिखरे हुए हैं। इओन, कातिलुस, बोगी आस, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र आदि में। इनमें आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से इओन, फेद्रुस और रिपब्लिक द्वितीय, तृतीय तथा दशम अध्याय अधिक उपादेय हैं। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः निम्नलिखित पांच विषयों का निरूपण है। पहला, आदर्श राज्य। दूसरा, प्रत्यय सिद्धांत। तीसरा, आत्मा की अमरत्व सिद्धि। चौथा, सृष्टि शास्त्र। पांचवा, ज्ञान मीमांसा। पैराग्राफ चेंज। इनमें प्लेटो की आलोचनात्मक धारणा आदर्श राज्य के संदर्भ में ही अधिकतर व्यक्त हुई है। वे स्पार्टा द्वारा एथेंस की पराजय से इतने विचलित थे कि एथेंस का साहित्यिक, कलात्मक एवं बौद्धिक प्रकर्ष उनके समक्ष महत्वहीन बन गया था, और वे चाहते थे कि एथेंस इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि पराजय का अवसर दोबारा न आए। इसके लिए उन्हें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि भावी नागरिकों को बनाने बिगाड़ने का सबसे समर्थ माध्यम शिक्षा ही है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के तर्क का रूप कुछ इस प्रकार है। सभी मनुष्य आदर्श राज्य अर्थात अच्छा शासन चाहते हैं। शासन अच्छा तभी हो सकता है जब उसके नागरिक अच्छे हों। नागरिक तभी अच्छे होंगे जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी। अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब विषय अच्छे हों, और विषय अच्छे वे ही हैं जो तन और मन को अधिक से अधिक अच्छा बनाए। तन अच्छा हो अर्थात स्वस्थ हो और सबल हो, मन अच्छा हो अर्थात सुसंस्कृत और निर्भीक हो। इसके लिए दो ही विषय अपेक्षित हैं, तन के लिए व्यायाम और मन के लिए संगीत। शिक्षा का आरंभ इन्हीं दो विषयों से होना चाहिए। इनके द्वारा तन मन के परिष्कार और विकास के बाद ही दूसरे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। सोवियत संघ आदि समाजवादी देशों में आज प्लेटो द्वारा निर्धारित पद्धति ही प्रचलित है। व्यायाम और संगीत पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक अनिवार्य है। पैराग्राफ चेंज। सुकरात का दृष्टिकोण बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक था। भौतिक जीवन में जो उपयोगी हो और नैतिक जीवन में जो सात्विक हो वही अभिलषणीय है। सच पूछिए तो सुकरात के विचार में सुंदरता और उपयोगिता ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि हैं तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक। इसलिए काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर उनमें प्रायः अंतर्द्वंद दिखाई देता है। कभी वे काव्य और दर्शन के पुराने कलह की याद दिलाते हैं तो कभी काव्य को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। कभी होमर की तारीफ के पुल बांधते हैं और कभी उन्हें समाज के लिए घातक बताते हैं। हमारा अनुमान है कि जीवन के आरंभ में उन पर काव्य का गंभीर तथा अनुकूल प्रभाव है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई एवं परिपक्वता आती गई वैसे वैसे दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया और काव्य का आकर्षण घटता गया। हमारे इस अनुमान की पुष्टि प्लेटो के ही कथन से होती है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में वे ग्लाउकोन संवाद के श्रोता से कहते हैं कि यद्यपि यौवन अपने यौवन के आरंभ से ही होमर के लिए तुझे संभ्रम तथा प्रेम रहा है जिससे अब भी मेरे शब्द आठों होठों पर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि होमर मोहक दुखांतकीय पूरे समुदाय के लिए महान नेता और गुरु है, किंतु सत्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक सम्मान नहीं दिया जा सकता। और प्लेटो का सत्य है कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है। ऊपर के उद्धरण में अब भी शब्द ध्यान देने योग्य है। उम्र और ज्ञान की परिपक्वता के बाद भी प्लेटो पर होमर का ऐसा अंतः स्थिति स्थित प्रभाव है कि उनके विरुद्ध कुछ कहने में शब्द ओठों पर आकर भी लड़खड़ाने लगते हैं, आसानी से निकलने नहीं पाते। यह परिस्थिति की बाध्यता ही है जो उनसे होमर के विरुद्ध कुछ कहलवाती है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के द्वारा काव्य की अग्राह्यता के दो आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। प्लेटो प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट दार्शनिक है। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार, आइडिया ही परम सत्य है। वह नित्य है और एक अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय परम सत्य का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला के तीसरे स्थान पर पहला स्थान प्रत्यय परम सत्य का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब वस्तु जगत का, और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का है। इसलिए परम सत्य से कला का तेरा अलगाव है और अनुकरण होने से वह मिथ्या है। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य है, त्रिधा अपेत है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो अपनी बात एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय अर्थात विचार या धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात आचार विचार में परिवर्तन उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो द्वारा दिया गया पलंग का दृष्टांत ले, यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय विचार में है और जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, क्योंकि सभी वस्तुओं का प्रथम प्रत्ययात्मक आइडिया निर्माण ईश्वर ही करता है। उस प्रत्यय के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कलाकार अंकित करता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए, एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है और जो हमारे प्रत्यय विचार में रहता है, दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई करता है और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार चित्रकार करता है। ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार ये तीनों पलंग के निर्माता हैं, किंतु तीनों के पलंग में अंतर है। सबसे पहले कोई वस्तु प्रत्यय में ही उद्भासित या रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण पर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ प्रत्यय स्थिति वस्तु की नकल होता है, इसलिए इसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। और चूंकि कलाकार, कवि, चित्रकार या मूर्तिकार किसी माध्यम, शब्द, रंग या पत्थर के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे एक सामान नया रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। निष्कर्षतः यथार्थ अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न राज्य का। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के कथन का सारांश। पहला, प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर उसका सृष्टा है, क्रिएटर। दूसरा, वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, बढ़ई कारीगर उसका निर्माता है। तीसरा, कला जगत वस्तु जगत अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो के अनुसार कला यथार्थ या सत्य से त्रिधा अपेत है, यह सर्वथा मिथ्या और अनुपयोगी है। यह तर्क चित्रकला पर ही नहीं काव्य और नाटक पर भी लागू है। होमर और हेसिओद 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैसे कवियों के काव्य अथवा एस्किलूस, सोफोक्लेस, एवरीपिडेस, अरिस्तोफानेस जैसे नाटककारों ने के नाटक भी अपवाद नहीं है। उन कृतियों को पढ़ने, सुनने या देखने से अच्छे नागरिक का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए इस पर नियंत्रण आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। पहला, प्लेटो का कहना है कि होमर के काव्यों इलियड और ओडिसी में देवताओं का चरित्र जैसा चित्रित है वह असत्य भी है और अनुचित भी, क्योंकि उन्हें क्रूर, लोभी, कलही, प्रतिशोधी आदि रूपों से चित्रित किया गया है। अपनी निर्बलताओं के कारण ऐसे देव चरित्र साधारण मानवों के धरातल पर आ जाते हैं, फिर उनका देवत्व क्या रहा है और वे मनुष्यों के बौद्धिक आत्मिक उन्नयन के में सहायक कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार वीरों और नायकों के चरित्र भी निर्बलताओं से रहित नहीं हैं, उनमें भी वे दोष हैं जो देवों में दिखाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि न तो देव का चरित्र आदर्श है न वीरों का, उनसे मनुष्यों को कोई सत प्रेरणा नहीं मिल सकती। दूसरा, होमर और हेसिओद के काव्यों में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों श्रोताओं के मन में भय उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें वीर और साहसी के बदले भीरु और कापुरुष बनाते हैं। काव्य ऐसा होना चाहिए जो नव युवकों में शौर्य की भावना भरे और मृत्यु की लालसा जगाए, क्योंकि दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। तीसरा, होमर के काव्यों में ऐसे उत्सवों का वर्णन है जिनसे भोग और विलास की कामना उत्तेजित होती है। और देवताओं का लोभ प्रकट होता है। इस प्रकार के वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम में बाधक हैं, अतः त्याज्य हैं। चौथा, काव्यों में ऐसी भी कहानियां आई हैं जिनमें सज्जन तो दुख भोगते दिखाए हैं और दुर्जन सुख भोगते। जिस विधान में सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा, वह नैतिकता कैसे टिकेगी? कोमल बुद्धि बालकों तथा नव युवकों पर ऐसी कहानियों का प्रभाव बहुत ही अनिष्टकारी पड़ेगा। पांचवा, नाटकों में अभिनेता नाटकीय पात्रों का अभिनय करते हैं। पात्र अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। बुरे पात्रों का लगातार अनुकरण करने से अभिनेताओं में भी उनकी बुराइयां आ जाती हैं। वे भी कायर, लंपट, धूर्त, वंचक बन जाते हैं और उनका स्वभाव बदल जाता है। यही नहीं, इसका असर देह, दिमाग और आवाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार समाज में अच्छाइयों के बदले बुराइयां फैलती हैं। प्लेटो ने जहां बुरे पात्रों के प्रभाव की बात तो कही, पर अच्छे पात्रों के प्रभाव की बात छोड़ दी। यदि बुरे पात्रों के अनुकरण से अभिनेताओं में बुराइयां आ सकती हैं, तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयां भी आ सकती हैं। छठा, दुखांतकों में कलह, हत्या, विलाप आदि और सुखांतकों में विद्रूपता, अभद्रता, मस्खरापन आदि देखने सुनने से दृष्टा श्रोता के मन में निष्कृष्ट भाव उदित होते हैं। इससे कुरुचि बढ़ती है और अनुशासन में शिथिलता आती है। एक बात है और दूसरों के सम्मुख शोक, दुख, विलाप आदि के प्रकट में मनुष्य को स्वाभाविक संकोच होता है, परंतु इसके प्रतिकूल दुखांतकों में उनका उन्मुख प्रदर्शन होता है। सत और महान पात्रों में भी आंसू बहाते हैं, छाती पीटते दिखाए जाते हैं। इससे उनकी चारित्रिकता, महत्ता तो खंडित होती ही है। उनको देखकर दूसरों को भी वैसा करने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी कुलीन एवं शालीन व्यक्ति निजी जीवन में दुख, शोक आदि का सामना शांत और धीर भाव से करता है और दूसरों के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करने में संकोच नहीं करता, किंतु नाटक में अभिनय से उद्वेलित होकर वही व्यक्ति आपा खूब बैठता है और हजारों के सामने आंसू बहाने लगता है, उसे आंसू बहाने में संकोच भी नहीं करता। रोने बिलखने से, इस संक्रामकता से समाज में वीर भाव आच्छन्न हो जाते हैं। अभिनेता तथा दृष्टा दोनों के आचरण की गंभीरता को धीरे धीरे छीण करता है, जिसके कारण वे उदात्त कार्यों को करने में योग्य नहीं रह जाते। सातवां, वे कोई व्यक्ति जीवन में गंभीरता से काम करे और नाटक में हल्केपन से, यह असंगत है। फिर वही व्यक्ति दुखांतक में भी अभिनय करे और सुखांतक में भी, और दोनों में सफलता प्राप्त करे, यह संभव नहीं, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित हैं। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की क्षमता सीमाएं हैं और अभिनेताएं भी उनसे परे हैं। आठवां, प्रज्ञा और प्रशांत व्यक्ति प्रायः सदा एक रस रहते हैं, अतः न तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है और न भावक के लिए आस्वाद, क्योंकि रंगशाला में प्रेक्षकों का ऐसा मिश्रित समुदाय होता है, उनमें बहुसंख्यक प्रेक्षक अपने उदात्त भावों से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। इसलिए जो नाटककार लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं, वे हल्के और ओछे भाव के का ही चित्रण पसंद करते हैं। इससे समाज में हल्कापन और ओछेपन का प्रसार होता है। नौ, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। प्लेटो के अनुसार तर्क निरपेक्ष कोई भी वस्तु अग्राह्य है। भाव से उद्भूत और भाव पर भी आधारित होने से काव्य या नाटक में तर्क का अवकाश नहीं रहता, इसलिए वह अग्राह्य है। 10वां, इससे भी बड़ी बात यह है कि वह भावमूलक होने से काव्य भाव को ही उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। हृदय को भी प्रभावित करता है, बुद्धि को नहीं। काव्य मनोवेगों का कारण है और सेचन करता है। पोएट्री फीड्स एंड वाटर्स द पैशंस। भाव की इस उद्दीप्ति के दो दुष्परिणाम होते हैं। एक तो सत्य को देखने समझने की दृष्टि आविल हो जाती है, फलतः सत्य और शिव का ज्ञान नहीं हो पाता, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। दूसरे, भाव का अतिरेक संयम तथा संतुलन को बाधित करता है। इससे समाज में वीरता के बदले विलास बढ़ता है, जो शासकों को उत्तेजनीय एवं स्त्रैण बनाता है। 10वां, 11वां, कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि वह अन्योक्ति है, इसलिए इसमें उसमें कोई अनौचित्य नहीं है, क्योंकि वह असत्य से सत्य पर जाने का मार्ग है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। प्लेटो का कहना है कि बालक या नव युवक में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह अन्योक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। वह जो कुछ भी ग्रहण करता है उसका प्रभाव उसके मन पर इतना गहरा और अमिट हो जाता है कि वह आजन्म उससे मुक्ति नहीं होता हो पाता। इसलिए उसके समक्ष वैसी ही कहानियां आनी चाहिए जो शुद्ध एवं नैतिक विचारों से संपन्न हो। पैराग्राफ चेंज। रिपब्लिक में प्लेटो का उपसंहार वचन है कि जब कोई अभिनेता हमारे यहाँ आता है और अपने को तथा अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहता है, तो हम उसके सामने घुटने टेक कर मधुर, पवित्र एवं विलक्षण बात के विलक्षण जीव के रूप में उसकी पूजा करेंगे। किंतु उससे हम यह भी अवश्य बता देंगे कि उसके जैसे लोगों को हमारे राज्य में रहने की अनुमति नहीं है, कानून उन्हें नहीं रहने देगा। अतः उसके शरीर में सुगंधित अंग राग लगाकर और उसके सिर में ऊन की माला पहनाकर हम उसे दूसरे नगर में भेज देंगे, कारण कि अपनी आत्मा की स्वास्थ्य के लिए हम सूक्ष्मतर और कठोरतर कवि को ही खोल रखेंगे जो सच्चरित्रों के ही गुणों का अनुकरण करे। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट है कि प्लेटो का काव्य नाटक विषयक या विरुद्ध साहित्येतर प्रतिमानों से प्रेरित है। राजनीतिक, दार्शनिक तथा निकषों पर काव्य के परीक्षण के ये निष्कर्ष सर्वथा स्वाभाविक हैं। प्लेटो का सबसे अव्यहृत उद्देश्य है राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना, जिसके नागरिक अप्रतिम सूरवीर हो, शुद्ध तर्कवादी हो और पूर्णतः सत्यनिष्ठ हो। उनके राज्य में भोग विलास, भाव आवेग, घूर्तता, वंचकता आदि सर्वथा वर्जित है। एक बड़ी रोचक बात यह है कि प्लेटो झूठ बोलने वाले का अधिकतर केवल शासकों को देते हैं, नागरिकों को नहीं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भौति के अनुसार शासक जो झूठ बोलते हैं वह शायद झूठ नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटो की उप निर्दिष्ट आपत्तियां आपातात जितनी सबल और समीचीन प्रतीत होती हैं उतनी नहीं है। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त मंतव्य को देखकर जरा भी संदेह नहीं रहता कि प्लेटो काव्य और नाटक के घोर विरोधी हैं, ऐसे विरोधी जो कवियों को अपने आदर्श राज्य से निकाल देने तक का प्रस्ताव कर बैठते हैं। किंतु यह उनका एक पक्ष है, निषेध पक्ष है। फिर भी यह है कि उन्हें इतना स्पष्ट और जोरदार कि उनका विधि पक्ष इससे दब गया है, ढक गया है। समुचित मूल्यांकन के लिए उसे भी देखना जरूरी है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो काव्य मात्र का नहीं बल्कि केवल वैसे काव्य का अपलाप करते हैं जो नागरिकों में भीरुता, निर्बलता, अनैतिकता का संचार करता है, जो उन्हें सत्य और शिव से हटाकर असत्य और अशिव की ओर ले जाता है, जो देवों और वीरों के चरित्रों में गर्हित दोष दिखाकर उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है। प्लेटो को वह काव्य पूर्णतः अभिमत एवं ग्राह्य है जिसमें देवों और स्त्रियों तथा प्रसिद्ध पुरुषों के गुणगान हो। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में से कवियों को बहिष्कृत करने की बात कहते हैं, क्योंकि कवियों की शक्ति और प्रभाव से वे परिचित हैं। काव्य के सौंदर्य एवं आकर्षण से, कलाओं की अनुरंजकता एवं मनोहारिता से अवगत हैं। वे दर्शन और काव्य के पुराने विरोध की चर्चा करते हुए दर्शन के प्रति अपना पक्षपात इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि काव्य की लोकप्रियता देख चुके हैं। वे यह भी देख चुके हैं कि होमर के दोनों महाकाव्य एथेंस की शिक्षा के अनिवार्य अंग हैं। जिस तरह आज के 30-40 साल पहले हिंदी के क्षेत्र में गोसाई जी की रामायण थी, कन्या की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण पात्र था कि वह रामायण पढ़ लेती है और रामायण का पारायण करने वाला पुरुष अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं करता था। एस्किलूस, सोफोक्लेस, एवरीपिडेस आदि लेखकों के नाटक एथेंस में 20,000 प्रेक्षकों के सम्मुख मुक्ताकाश रंगमंच पर अभिनीत होते हैं और प्रेक्षक तन्मय होकर सुध बुध खोकर उन्हें देखते हैं। प्लेटो के जैसा इस स्थिति का दृष्टा और ज्ञाता काव्य नाटक की रमणीयता से अप्रभावित कैसे रह सकता था, खासकर तब जब वे उसे उच्च कोटि का कवि हृदय मिला था। पैराग्राफ चेंज। प्लेटो ने काव्य नाटक के संबंध में जो आपत्तियां उठाई हैं उनकी जरा समीक्षा करें। होमर ने देव चरितों का जो चित्रण किया है वह मिथकीय मैथोलॉजिकल आख्यानों के आधार पर, जिसका जैसा चरित्र मिथकों में है उसका वैसा ही चरित्र उन्होंने रखा है। इसमें होमर का क्या दोष यदि उन देवों के चारित्रिक विशेषताओं में होमर हेर फेर करते तो परिवर्तन के दोषी ठहराए जाते, मिथक विरोधी कहे जाते। यह ठीक है कि वीरों के चरित्र में भी कभी कभी निर्बलता के स्थल आए हुए हैं, किंतु उन्हें बदल देना न तो सत्य के अनुकूल होता है न परंपरा के। सज्जन का दुख भोग और दुर्जन का सुख भोग जब संसार में देखा जाता ही है तब कभी क्या करे। जबरदस्ती सज्जन के से सुख और दुर्जन से दुख कैसे भोगवाए, यह जैसा देखता है वैसा वर्णन कर देता है। नाटकों के संबंध में भी प्लेटो की आपत्तियों में सार नहीं है। एक तो किसी पात्र का अनुकरण करने से अभिनेता में उसकी चारित्रिक विशेषता आ जाए, यह आवश्यक नहीं है, और यदि आती है तो बुरे पात्रों के अनुकरण से जहां बुराइयों के आने की संभावना है वहां अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयों के भी तो आने की संभावना है। रंगमंच पर हत्या विलाप आदि को देखकर सहृदयों की सुरुचि को ठेस लगती है, यह ठीक है, पर यथार्थवादी कहेगा कि जीवन में ऐसी बातें तो होती ही हैं, तब उनके प्रदर्शन या प्रतिरूपण में क्या हानि है। केवल नाटक देखने से राष्ट्र का चरित्र न बनता है और न बिगड़ता है। यदि नाटक देखने मात्र से चरित्र बनता बिगड़ता तो व्यक्ति या समाज या राष्ट्र का चरित्र एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ देना कितना आसान होता। अभिनेता गंभीर तथा हल्के पात्रों का अनुकरण समान दक्षता तथा सफलता में से नहीं कर सकता। यह तर्क भी प्रत्यक्ष समर्थित नहीं है। वस्तुतः अभिनय कला का वैशिष्ट्य तो इसी में है कि अनुकार्य चाहे जैसा भी हो अनुकर्ता उसका विश्वसनीय अनुकरण कर लेता है। साधारण और असाधारण अभिनेता में तो यही अंतर है। काव्य अंतः प्रेरणा से उत्पन्न और भाव मूलक होता है, इसलिए वह काव्य है, अन्यथा तर्क प्रसूत और तर्काश्रित होने से भी वह भी दर्शन बन जाता, भाव मूलक होने से काव्य सरस होता है और तर्क मूलक होने से ही दर्शन नीरस। काव्य की भाव मूलकता और सरसता उसके गुण हैं, दोष नहीं। सर्वत्र तर्क की प्रतिष्ठा हृदय और मस्तिष्क के अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व के संतुलन एवं सामंजस्य के लिए कहाँ तक वांछनीय होगी, यह भी विचारणीय है। काव्य मनोवेगों का पोषण और सेचन करता है, इसलिए अवांछनीय है। इस आपत्ति का विशद उत्तर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिया है, इसे हम आगे दिखाएंगे। उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि प्लेटो ने काव्य नाटक में जो दोष देखे दिखाए हैं वे वास्तविक से अधिक आयासी हैं। बर्ट्रेड रसल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के में अनुदार विचारों को भी ऐसी सज धज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित करते रहे हैं।